الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو سورہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں معرف القرآن جلد نمبر 5 سے، اور جو ابھی آیت تلاوت کی گئی اس کے ہم معارف و مسائل پڑھ رہے تھے پچھلی کلاس میں. تو یوسف علیہ السلام کا قصہ تمام ہوا اس آیت میں، اس سورت میں، اور یوسف علیہ السلام نے سب سے آخر میں اللہ رب العزت کی طرف مکمل متوجہ ہو کر کے دعا مانگنی شروع کری کہ اے رب، تو نے مجھے حکومت دی، ملک دیا. ملک دیا یعنی ملک کی حکومت دی. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور سکھایا مجھ کو باتوں کا پھیرنا یا باتوں کی تعویل کرنا، باتوں کو سمجھانا، سمجھنا، ٹھیک ہے، یہ تو نے مجھے علم دیا. فاطر السماوات والارض، اے پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہی یہ بات چل رہی ہے کہ فاطر السماوات والارض، ٹھیک ہے، انت ولی، تو ہی ہے میرا ولی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلمن، وفات دے مجھے بحیثیت مسلمان کے، یعنی اس حیثیت میں کہ میں تیرے سامنے اپنے آپ کو سپرد کیا ہوا ہی ہوں، یعنی ایمان کے اوپر خاتمہ مجھے نصیب فرما. وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ، اور صالحین بندوں کے ساتھ مجھے میرا الحاق فرما. تو اسے معروف مسائل میں مزید آگے پڑھتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر میں حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جس وقت بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو ان کی عمر 17 سال کی تھی. پھر 80 سال والد سے غائب رہے، 80 سال غائب رہے، یعنی یہ پورا کا پورا قصہ اس روایت کے مطابق 80 سال پر محیط تھا. اور والدین کی ملاقات کے بعد 23 سال زندہ رہے، اور 120 سال کی عمر میں وفات پائی. اور محمد ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل کتاب کی روایات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی مفارقت کا زمانہ 40 سال تھا. پھر یعقوب علیہ السلام مصر میں تشریف لانے کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ 17 سال زندہ رہے، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی. تفسیر قرطبی میں اہل تاریخ کے حوالے سے مذکور ہے کہ مصر میں 24 سال رہنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور وفات سے پہلے یوسف علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری لاش کو میرے وطن بھیج کر میرے والد اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے. پھر سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سال کی لکڑی کے تابوت میں رکھ کر، یعنی خاص قسم کی لکڑی ہوتی ہے، اس کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس کی طرف منتقل کیا گیا. اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چل گئی کہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس میں لے جا کر دفن کرتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر وفات کے وقت 147 سال تھی، یہ اس روایت کے مطابق ہے، 147 سال. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام مع اپنی اولاد کے جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 مرد و عورت پر مشتمل تھی، 93. اور جب یہ اولاد یعقوب علیہ السلام، اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی. تو دوسرے مقامات کے اوپر بھی معروف القرآن کے اندر 6 لاکھ ان کی تعداد لکھی ہوئی ہے، یہاں پر 6,70,000. अब्दुल्ला इब्ने मसूद अता इनकी इस रवायत को नकल फरमाते हुए लिखा है। तो यानी इतनी तेजी से जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी औलाद के अंदर भी बरकत अता फरमाई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से फिर मूसा अलैहिस्सलाम के जो जमाना है बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब इसमें इतनी तफसील जो है वो क्लियर नहीं है कि कितनी जनरेशन के बाद जो है वो यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। कुछ रिवायत के मुताबिक तो 2-3 जनरेशन में, लेकिन 2-3 जनरेशन के अंदर तो ये यानी आदतन ये चीज जो है ना वो पॉसिबल नहीं लगती कि 100 की तादाद के लोग जो है वो 6 लाख बन जाएं। तो अगर ये तादाद सही है तो फिर कुछ ज्यादा जनरेशन जो है वो दोनों के दरमियान गुजरी होंगी। ये पहले जिक्र हो चुका है कि साबिक अजीज मिस्र के इंतकाल के बाद शाह मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी जुलेखा के साथ करवा दी थी। ठीक है, ये पहले आ चुका। तौरात और अहले किताब की तारीख में है कि इनसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के 2 लड़के इफ्राईम और मनशा और एक लड़की रहमत बिनत यूसुफ पैदा हुए। रहमत का निकाह हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। अयूब अलैहिस्सलाम जो है वो यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ही के दौर में दुनिया में मौजूद थे। तो और वो लेकिन उनका उनकी जगह जो थी, मकाम जो था वो मिस्र नहीं था, वो दूसरे मकाम के ऊपर थे। तो इनकी बेटी का निकाह अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ हुआ और इफ्राइम की औलाद में यूशा बिन नून पैदा हुए जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रफीक थे। यूशा बिन नून वही थे जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हजरत खजर अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले थे। और फिर बाद में जब खजर अलैहिस्सलाम मिल गए थे तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक्य जिक्र जो है वो खत्म हो जाता है वाक्य में से। तो ऐसा लगता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ना फिर वापस चले गए थे। तो ये सब जो है ये तौरात और अहले किताब की तारीख में से है, यानी ये बनी इसराइली रिवायात हैं। तो इनमें इतना सारा जो तफावत है यानी इतने सारे जो डिफरेंसेस बजाहिर नजर आ रहे हैं इनके अंदर, तो इसमें अब बनी इसराइल की रिवायात का मामला यही है जो कि पिछली मजलिस में भी हमने पढ़ा था, बल्कि हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर ही पढ़ा था कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाए कि जो बनी इसराइल की रवायात है ना तो उनकी ना तस्दीक करो ना उनकी तकजीब करो, बल्कि उनके ऊपर जो है वो खामोशी इख्तियार करो और बस ये कह दो कि मैं अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाया। ठीक है, तो बनी इसराइल की रवायात में अगर कोई इतना सारा जो है वो तफावत और इतनी सारी यानी कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती भी हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी इनका ये कोई अकीदे से मुतालिक बातें हैं भी नहीं, बस ये तादाद वगैरह से मुतालिक बातें। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतकाल 120 साल में हुआ की उम्र में हुआ और दरियाए नील के किनारे पर दफन किए गए। इब्ने इसहाक ने हजरत उरवा इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत से बयान किया है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि बनी इसराइल को साथ लेकर मिस्र से निकल जाएं, अब ये तो सहाबा की रवायात है ना, तो इन सहाबा की रवायात में ये अलबत्ता है कि नबी अलैहिस्सलाम से इन्होंने सुना होगा। ठीक है, यानी बकायदा मरफू रवायत नहीं है कि सहाबी ने फरमाया हो कि नबी अलैहिस्सलाम से मैंने सुना हो, बल्कि कि आप का जिक्र किए बगैर जो है वो अगर किया हो तो उसको मरफू रिवायत नहीं कहते। ठीक है, तो ऐन मुमकिन है कि नबी अलैहिस्सलाम से सुन करके ये बात कही हो तो फिर ठीक है, जो आप को बताया वो ज्यादा ऑथेंटिक है। बनी इसराइल की रवायात में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती तो उसके बारे में फिर खामोशी अख्तियार करने का हुक्म है। बहरहाल, तो इब्ने साख ने उरवा इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत से बयान किया है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि बनी इसराइल को साथ लेकर मिस्र से निकल जाए तो बजरिया वही अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाश को मिस्र में ना छोड़ें, उसको अपने साथ लेकर मुल्क शाम चले जाएं और उनके आबाओ अजदाद के पास दफन करें। इस हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तफ्तीश करके उनकी कब्र दरियाफ्त की जो एक संगे मरमर के ताबूत में थी। उसको अपने साथ अर्ज़े कनान फलस्तीन में ले गए और हजरत इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम के बराबर में दफन कर दिया। ताबूत में यानी जो अंबिया अलैहिस्सलाम जैसे कि याकूब अलैहिस्सलाम का भी जिक्र आया कि साल की लकड़ी के ताबूत में उनको रखा गया था और फिर वहां पे जाकर के जमीन के अंदर उस ताबूत को डाल दिया गया। उसी तरीके से ये जो है वो संगे मरमर के ताबूत में थे, क्योंकि अब जब बादशाह बन जाते हैं तो बादशाह फिर वो लकड़ी के ताबूत की वजह से संगे मरमर की एडवांसमेंट हो जाती है। तो बहरहाल तो इस तरह से जो है ना वो अंबिया के जो बदन होते हैं वो वैसे भी किसी किस्म की भी जो है ना वो शिकस्त और रेख से जो है वो महफूज होते हैं, ना जमीन उनको खा सकती है, ना जमीन के कीड़े मकोड़े उनको खा सकते हैं। तो उनको इस तरीके से ताबूत में रख दिया जाना जो है वो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद कौम अमालीक के मालिका जिनका जिक्र भी आता है ना, मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े के अंदर भी उनका जिक्र आता है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद कौम अमालियत के फराइना मिस्र पर मुसल्लत हो गए और बनू इसराइल उनकी हुकूमत में रहते हुए दीन यूसुफ अलैहिस्सलाम पर कायम रहे, मगर उनको गैर मुल्की समझकर तरह तरह की ईजाएं दी जाने लगी। यहां तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने उनको इस अजाब से निकाला। तो हुकूमत जो है फिर इनके पास से चली गई और अमालका के जो जिनको फिरौंस फराइना कहा जाता है तो उनको फिर अल्लाह ताला ने हुकूमत दे दी। अब उसकी वजह क्या बनी अल्लाह आलम, लेकिन जो हालात हमें नजर आते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात को पढ़ करके तो उससे ये पता चलता है कि ये बनी इसराइल के जो लोग थे ना, ये मूसा अलैहिस्सलाम यानी ये दीन पर तो कायम रहे लेकिन गलतियां कोताहियां वगैरह उन्होंने भी बहुत सारी शुरू कर दी थी। हत्ता कि इनमें कुछ ऐसे भी तबके थे कि जिन्होंने बुत परस्ती वगैरह भी शुरू कर दी थी, ये किबतियों के तहत रह करके और उनके माहौल में रच बस गए थे। और जब ही जब वो सामरी जादूगर ने मूसा अलैहि सलाम जब चले गए थे ना कोही तूर के ऊपर, तो सामरी जादूगर ने उनको जो झांसा दिया था ना कि ये तुम्हारा परवरदिगार है, ये तुम्हारा रब है, जिस बिछड़े के अंदर से जो आवाज निकलनी शुरू हो गई थी, तो वो लोग जो कि मिस्र में रहते हुए ही इस किस्म की हरकतों में मुब्तला हो चुके थे ना, तो उन लोगों को बड़ी अच्छी लगी ये वाली बात कि हाँ हम तो वहां पर भी मिस्र के अंदर भी इसी तरह के यानी किया करते थे। और यानी जब आप गैर कौमों के साथ रहते हैं तो मुश्किल होता है अपने दीन के ऊपर बिल्कुल सही तरीके से कायम रहना, तो फिर उनके ऊपर ऐसे असरात आ गए थे। जैसे अभी भी जब हम देखते हैं कि उन इलाकों के अंदर जहाँ पर के मुसलमान और काफिर जो है वो बहुत ज्यादा एक साथ मिलजुल करके रह रहे होते हैं, तो फिर बड़ी अजीब अजीब किस्म की जो है ना वो चीजें मुसलमानों में भी दाखिल हो जाती हैं, रसूम रिवाज की शक्ल में भी दाखिल हो जाती हैं, हत्ता के इवन इबादतों की ऐसी शक्लें भी दाखिल हो जाती हैं मुसलमान माशरे के अंदर। बहरहाल तो अल्लाह ताला ने फिर इनको आजमाइश में डाल दिया, जैसे कि बनी इसराइल के साथ कई बार ऐसा हुआ कि जब वो दीन से जो है वो दीन के ऊपर उन्होंने अमल करना अपना कम किया, बुराइयों के अंदर गुनाहों के अंदर पड़े, तो दूसरी कौमें आकर के उनके ऊपर गालिब आ जाती थी। अच्छा, फिर उसके बाद हिदायात और अहकाम। आयात मस्कूरा में एक मसला तो ये मालूम हुआ कि वालिदैन की तअज़ीम व तकरीम वाजिब है, जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े से साबित हुआ। उन्होंने अपने वालिद के इकराम में खड़े हुए और इतने वालिद का इकराम किया और उनसे ऐसे बात करी वगैरह, सब से साबित है। दूसरा मसला ये मालूम हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत में सजदे तअज़ीमी जायज़ था, तअज़ीम के लिए सजदा करना, इसीलिए वालिदैन और भाइयों ने सजदा किया, मगर शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सजदे को खास इबादत की अलामत करार देकर गैरुल्लाह के लिए हराम करार दिया गया। इबादत की अलामत यानी सजदा करना जो है ये यानी ये बाकायदा इबादत के यानी सिंबॉलिकल इबादत है ये, तो उसको हराम करार दिया गया। कुरान मजीद में फरमाया ला तस्जुदू लिश्शम्स वला लिलकमरी, नहीं सजदा करो सूरज की तरफ वरना जो है वो चांद की तरफ। और हदीस मुबारक में है कि हजरत मुआज रज़ी अल्लाह तआला जब मुल्क शाम गए और वहां देखा कि नसारा अपने बुजुर्गों को सजदा करते हैं तो वापस आकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सजदा करने लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और फरमाया कि अगर मैं किसी को सजदा करना जायज समझता तो औरत को कहता कि अपने शौहर को सजदा किया करे। ठीक है, यानी अगर गैरुल्लाह को सजदा करना जो है वो जायज होता तो बीवी से कहता कि वो अपने और अपने शौहर को सजदा किया करे, यानी इतनी ज्यादा ताजीम जो है वो उसका हुक्म है। बीवी के लिए शौहर की तरफ। इसी तरह हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपको सजदा करना चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसजुद लिया सलमानु वसजुद लिल हय्य अल्लज़ी ला यमूतु, यानी ऐ सलमान मुझे सजदा ना करो बल्कि सजदा सिर्फ उस जात को करो जो हय व कयूम है, यानी जिंदा है और कायम है, जिसको कभी फिना नहीं है। इससे मालूम हुआ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तअज़ीमी सजदा जायज़ नहीं तो और किसी बुजुर्ग या पीर के लिए कैसे जायज़ हो सकता है। यानी नीयत, कोई कहे कि मेरे दिल में जो है ना वो इबादत का सजदा नहीं है, मैं तो तअज़ीम का सजदा करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इनकी इतनी मोहब्बत है और इनकी मैं इतनी अजमत का कायल हूँ और ये इतने नेक हैं, दीनदार हैं, जो भी हैं, लेकिन सजदा फिर भी जायज नहीं होगा। इस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए ताजीमी सजदा जायज नहीं है। जब पहले कभी इस मौजू के ऊपर यही सूरह यूसुफ के अंदर ही बात हुई थी तो उस वक्त साजिद ने आप लोगों को इसके कुछ उसूल बताए थे, एक उसूली बात बताई थी, वो अगर किसी को याद हो तो अगर आप में से कोई बता दे, ठीक है, थोड़ी थोड़ी जो है वो उसमें भी अगर आपकी तरफ से भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहे तो ज्यादा अच्छा होता है। एक उसूली बात बताई थी कि नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत में सजदे ताजीमी को भी नाजायज करार दे दिया गया, जबकि पिछली उम्मतों के अंदर ऐसा नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसी तरह की फिर और भी चीजें हैं, ठीक है, तो वो जो बहस थोड़ी सी आपके सामने जिक्र करी थी तो उसका अगर किसी को क्लू याद हो, यानी ये तो एक स्पेसिफिक पॉइंट है ना, सजदे ताजीमी को मना कर दिया गया, लेकिन एक कुल्ली, यानी ये तो एक जुजी है, एक कुल्ली भी है इसमें, कुल्ली, ठीक है, कुल्ली का मतलब होता है यानी एक प्रिंसिपल, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, ठीक है। वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या है, इन्होंने लिखा असबाबे बईदा असबाबे अबादिया, जी माशाल्लाह, यही बताया था कि एक होता है गुनाह का असबाब करीब, ठीक है, जो कि यानी खुद गुनाह नहीं है लेकिन बहुत करीबी सबब है कि अगर उस काम को किया जाएगा तो यकीनन गुनाह हो जाएगा, यकीनन गुनाह हो जाएगा, ठीक है, तो उनको असबाब करीब कहा जाता है। तो उनको तो नबी अलैहिस्सलाम की जो शरीयत है उसके अंदर मकरूह तहरीमी करार दे दिया गया, मकरूह तहरीमी, ठीक है, यानी कल हराम, जैसे कि हराम ही है, हालांकि हराम नहीं है ये, कल हराम, एज इफ इट्स हराम, लेकिन दूसरे असबाब होते हैं कि जो कि असबाब बईदा होते हैं, यानी वो ऐसा नहीं है कि जरूर, यानी जरूर बिल जरूर अगर वो काम किया जाएगा तो इंसान गुनाह का के अंदर दाखिल हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा दूर है ये, ठीक है। तो ऐसे जो असबाब है ना उनको मकरूह तंजीही करार दिया फुकहाए कराम ने, ठीक है ना, मकरूह है तंजीही, यानी कराहियत उनके अंदर भी है लेकिन उस दर्जे की कराहियत नहीं है जैसे कि मकरूह तहरीमी के अंदर कराहियत है, ठीक है। और तीसरे किस्म के असबाब होते हैं असबाब अबअद, यानी बहुत दूर के असबाब, जिनसे के गुना होना मुमकिन है लेकिन वो बहुत यानी कम पॉसिबिलिटी है उसकी, तो इस वजह से ना उनको मुबाह करार दिया शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। मुबाह, मुबाह का मतलब है परमिसेबल, ठीक है। और इसकी मिसाल जैसे कि माशाल्लाह डायरेक्ट मैसेजेस के अंदर लोगों ने लिखी है कि अंगूर खरीदना या अंगूर बेचना, अब अंगूर से जो है वो शराब बनाई जा सकती है, ठीक है, लेकिन अंगूर इटसेल्फ जो है वो हलाल है, और अगर अंगूरों के खरीदने और बेचने को भी हराम करार दे दिया जाएगा तो फिर ये बहुत इसके अंदर हर्ज हो जाएगा, दीन के अंदर, दीन में बहुत ज्यादा तंगी सख्ती हो जाएगी, अगरचे के अंगूर से कोई शराब बना सकते हैं अपने घर के अंदर, ठीक है, तो इसको मुबाह करार दिया गया। लेकिन दूसरे ऐसे असबाब हैं कि जो कि करीब हैं गुनाह के पहुंचा देने के लिए, तो इस वजह से उनको मकरूह है तंजीही, या और भी ज्यादा करीब है तो मकरूह है तहरीमी करार दिया गया, ठीक है। तो ये जो सजदा करने वाला मामला है ताजीमी सजदा, ये मकरूह है तहरीमी, यानी ये जायज ही नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल हराम ही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी हो गया तो ये तो हराम ही हो गया ना फिर। तो इसे मालूम हुआ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तअज़ीमी सजदा जायज़ नहीं है तो और किसी बुजुर्ग या पीर के लिए कैसे जायज़ हो सकता है। लेकिन जो जुहला हैं तो वो किसी के कहने के ऊपर फिर सजदा करते हैं, कब्रों को सजदा करते हैं, जिंदा पीरों को भी सजदा करते हैं। और ऐसे वाक़ ऐसे जो केसेस नहीं, बड़े बड़े आम है, ये इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी आम है, अरब मुल्कों के अंदर भी आम है, हत्ता के यूरोप वगैरह के अंदर जो मुसलमान रहते हैं ना, जैसे अल्बेनिया है या बॉस्निया है या जो है वो साइप्रस वगैरह के इलाके हैं, वहां पर तो ये पीरी मुरीदी जो है वो बड़ी जबरदस्त तरीके से वो करते हैं। और उसमें पीर साहब को जो है ना वो खूब जबरदस्त तरीके से टिका के सजदे किया करते हैं। हमारे एक जानने वाले भी पहले कहीं इसी तरह के किसी के साथ फंसे हुए थे, तो उन्होंने फिर हमें बताया कि वो जो पुराने पीर साहब थे उनके बाद में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत के साथ उन्होंने बैत कर ली, लेकिन बताने लगे कि जो पुराने पीर साहब हैं तो उनको जो है वो लोग सजदा किया करते थे, खुद नहीं करते थे अल्हम्दुलिल्लाह, ये बचे रहे थे, लेकिन दूसरे सजदे करते थे। और कैसे करते थे, पीछे से टांग को जो है ना जमीन से थोड़ा सा उठा देते थे, ठीक है। तो वो टांग को उठाने से उनका क्या मकसद था कि भाई ये नमाज वाला सजदा जो है ना उसमें तो दोनों पैर जो है वो जमीन को लगे होने चाहिए, तो हमने उससे जो है ना वो इसको डिफरेंट बनाने के लिए पीछे से एक टांग को जो है ना जमीन से उठा दिया है। सजदा कर रहे हैं लेकिन टांग उठा करके कह रहे हैं ये मुख्तलिफ किस्म का सजदा है, ये वो वाला सजदा नहीं है, इबादत वाला, ठीक है। तो इस तरह के तो तमाशे फिर करते हैं। और बहुत सारे टांग उठाने वाली बात तो सिर्फ यूरोप अमेरिका वाली बात है, हमारे यहाँ तो कोई टांगा भी नहीं उठाता सजदा करने के लिए। एनीवेज, तो हाजा तअवीलु रुयाया से मालूम हुआ कि ख्वाब की तअवील बाज़ औक़ात ज़माने दराज के बाद जाहिर होती है, जैसे इस वाक़े में 40 या 80 साल के बाद ज़ुहूर हुआ, ठीक है। तो ख्वाब देख लिया, बड़ी अच्छी बात है, आपने देख लिया, आप खामोश होकर के बैठ गए हैं, अब उसकी तअवील का कुछ पता नहीं है कि वो अभी होगी, कल होगी, परसों होगी या कई सालों के बाद होगी, और पता नहीं जेल भी जाना पड़ गया उससे पहले, और जो है वो नौकर बनना पड़ गया, किसी का गुलाम बनना पड़ गया, कुछ पता नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर कोई ख्वाब की ताबीर बनाने बताने वाला कंफर्म बंदा आपके पास है तो फिर उससे जो है ना वो प्राइवेसी में जा करके अपने ख्वाब की ताबीर वगैरह पूछ लें, उसमें हर्ज नहीं है। वो सहाबा कराम भी नबी अलैहिस्सलाम को बताया करते थे और आप उसमें बताया करते थे उसकी ताबीर, लेकिन अगर कोई है ऐसा शख्स आपके पास अवेलेबल ना, वरना उसके फिक्र में ना लगे रहें, उसकी वजह से जो है वो अपनी ज़िंदगी को आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही काम करें तो सही काम करते रहें, गलत काम करें तो गलत काम से तो वैसे भी तौबा करनी है, चाहे ख्वाब देखा हो चाहे ख्वाब ना देखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ख्वाब जो होती है, ख्वाब जो होता है वो कोई हुज्जत नहीं होती शरीयत के अंदर, ये उसकी वजह से नेकी छोड़ दी या उसकी वजह से जो है वो गुनाह से तौबा कर रहे हैं, वरना नहीं कर रहे हैं, आप देखेंगे तभी करेंगे गुनाह से, गुनाह से तौबा, ऐसा कुछ नहीं है। कद अहसन बी से साबित हुआ कि जो शख्स किसी मर्ज या मुसीबत में मुब्तला हो फिर उससे निजात हो जाए तो सुन्नत पैगंबरी ये है कि निजात पर शुक्र अदा करे और मर्ज व मुसीबत के जिक्र को भूल जाए, ठीक है। तो नबियों की सुन्नत है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और यानी जिक्र को भूल जाए, यानी जिक्र ना किया करे बुराई का जो उसको तकलीफ पहुंचे वगैरह, अनलेस के उससे कोई फायदा, कोई दीनी फायदा होता हो, जैसे दूसरों को इबरत के लिए बता रहे हैं कि मुझसे ये गलती हो गई थी, इसकी वजह से मुझे इसका खुमियाजा भुगतना पड़ा, तो आप ये वाली गलती ना कीजिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट नीयत है और ये दावत तो तबलीग वाली नीयत है, ये खैर ख्वाही वाली नीयत है, इबरत लोगों को बताने के लिए, वरना वो भी अगर अपनी जिल्लत होती हो तो इवन इबरत के लिए भी जिक्र करने की जरूरत नहीं, ठीक है। खामखा जो है अल्लाह ताला ने जब आपके गुनाह के ऊपर पर्दा डाल दिया तो अब लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ, पहले से लोगों को पता है और फिर आप इबरत के लिए किसी को बता रहे हैं ताकि उसको फायदा हो जाए, तो फिर तो पहले से लोगों को पता था ना, लेकिन कोई छुपी ढुकी छुपी छुपी चीज है तो फिर अपना नाम लेकर के ना बताएं। हाँ, इस तरह से बता सकते हैं कि किसी ने ऐसा किया था तो उसको जो है वो बुरा दिन देखना पड़ गया था, तो आप ऐसा ना करें, अपना जिक्र ना करें उसके अंदर कि मैंने किया था, ठीक है। तो मर्ज व मुसीबत के जिक्र को अवॉइड करें लोगों के सामने। इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला जिस काम का इरादा फरमाते हैं उसकी ऐसी लतीफ और मख्फी तदबीरें और सामान कर देते हैं कि किसी को उसका वहमो गुमान भी नहीं हो सकता, ठीक है। यानी दिलों के अंदर ख्याल डाल देना, सोच डाल देना, किसी तरफ ध्यान कर देना लोगों का, अल्लाह ताला के लिए नाउज़ बिल्ला बड़ी बुरी मिसाल है लेकिन उर्दू मुहावरे में जैसे कहते हैं ना, बाएं हाथ का खेल है ये, अल्लाह ताला का कोई बाएं हाथ वगैरह का ऐसा खेल, ये मुहावरा था खाली समझाने के लिए, यानी बहुत ही आसान है किसी के दिल में ख्याल डाल देना, ठीक है। तो अल्लाह ताला वली ही फिर दुनिया जो है ना, दुनिया में मेरा कारसाज है, यानी अल्लाह ताला बड़े आसानी के साथ जो है ना वो मेरे काम बना सकते हैं, बनाते हैं, और सब कुछ जो है ना अल्लाह के बस में है। ये अल्लाह ताला के साथ इंसान का गुमान रहना चाहिए। एक मिनट, क्या लिखा है उन्होंने, टू टेलिंग अदर्स कैन लेड देम टू बदगुमानी। हाँ, टेलिंग अदर्स अगर कोई ऐसी फायदेमंद चीज नहीं है तो फिर वो बदगुमानी का शिकार हो जाएंगे आपके बारे में। अब ये साजिश ने आप लोगों को क्लास के अंदर बताया था कि भाई जब नौजवान थे ना तो बड़ी तेजी के साथ भागा करते थे, तो कुर्तों की जेबें फट जाया करती थी, ठीक है। तो अब वो किसी मकसद से बताया था, अब आप उसकी वजह से अगर बदगुमान हो जाए कि अभी इनके अंदर तो इनकी जो जवानी थी ना, ये तो यानी आम इंसानों जैसी यानी अब तो बड़े उस्ताद बने हुए हैं और अब तो बड़े जाना वो शेख बने हुए हैं। जवानी में शेख नहीं थे ये, जवानी में जो है ये अल्लाह के वली नहीं थे, और जवानी में कामिल इंसान हुआ। ये इस किस्म की तो बेवकूफियों की बातें हैं ना, तो इस वजह से हमने परवाह नहीं करी इसके, हमने बता दिया कि भाई हम भी ऐसी हरकतें किया करते थे, और वो कोई ऐसी गुनाह वाली बात तो नहीं बताई थी ना भाई। एक तेजी थी, भागते थे, और जो है ना वो कुंडे के अंदर जो है वो जेब फंस जाती थी और जेब जो है पड़े आया करती थी। तो अब इसमें कोई बदगुमान होते हैं, हम क्या करें। मैं एनीवेज, तो अल्लाह ताला कारसाज हैं और अल्लाह ताला मामलात के जो है ना वो असबाब बना दिया करते हैं बहुत आसानी के साथ। तवफनी मुस्लिमन, मैं यानी इस आयत में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ईमान और इस्लाम पर मौत की दुआ मांगी, ठीक है। यानी आप मुझे मौत दे दीजिए, ठीक है ना, पहला लफ्ज तो यही है ना, आप मुझे मौत दे दीजिए, ठीक है। तो इससे मालूम हुआ कि खास हालात में मौत की दुआ करना ममनूअ नहीं है, और अहादीस सहीहा में जो मौत की तमन्ना को मना फरमाया है उसका हासिल ये है, यानी उसका मतलब ये है कि दुनिया की तकलीफों से घबरा कर बेसब्री से मौत मांगने लगे, ये दुरुस्त नहीं। कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स किसी मुसीबत की वजह से मौत की तमन्ना ना करे, अगर कहना ही है तो यूं कहे कि या अल्लाह, मुझे जब तक मेरे लिए जिंदगी बेहतर है उस वक्त तक जिंदा रख, और जब मौत बेहतर हो तो मुझे मौत दे, ठीक है। यानी कंडीशनली इस तरीके से अल्लाह ताला से दुआ मांगी जा सकती है कि जब तक मेरे लिए दुनिया में जिंदा रहना बेहतर है, यानी मेरी आकिबत के लिए, मेरी मुआश के लिए, अगर दुनिया में रहना बेहतर है तो आप मुझे दुनिया में रखें, और अगर दुनिया में ना रहना बेहतर है तो फिर मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे अपने पास बुला लीजिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला को ना यानी हुक्म नहीं दे सकते हैं कि नहीं अल्लाह बस आप मुझे अपने पास बुला लीजिए, ठीक है। इस तरह से नहीं अल्लाह ताला के साथ हम मुआमला कर सकते हैं, गोया कि अल्लाह ताला को ऑर्डर दे रहे हैं और टास्क लगा रहे हैं अल्लाह ताला को कि ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। खैर की दुआ मांगनी चाहिए, आफियत मांगनी चाहिए, आफियत, ठीक है। तवफनी मुस्लिमन, और इन्होंने जो दुआ मांगी थी वो तो वैसे भी इसके साथ एक जो है वो क्वालिफायर लगा हुआ था कि मुझे आप मौत दीजिए इस हालत में कि मैं इस्लाम पर हूं, मैं दीन इस्लाम पर हूं, मैं जो हूं वो ईमान की हालत में हूं, ठीक है। तो इस आयत से हमें ये भी एक यानी दलील मिलती है कि हर नबी जो थे ना उनका जो दीन था वो इस्लाम ही था, ठीक है। कोई नबी जो है ना दुनिया के अंदर ईसाइयत लेकर के नहीं आए, कोई नबी दुनिया के अंदर यहूदियत लेकर के नहीं आए, ठीक है ना, सारे नबी जो है वो इस्लाम ही लेकर के आए, और इसमें किसी नबी में फर्क नहीं है सिवाय इसके के शरीयत की थोड़ी थोड़ी सी तफसीलात बदलती रहीं, लेकिन अकायद जो है वो बिल्कुल भी नहीं बदले। क्या लिखे हैं उन्होंने, मैं हिंदुस्तान झारखंड रांची से शायद अगर मैं भी, अच्छा भाई मुझे नौकरी अच्छी जिससे मिल, अच्छा लिखिए ना मेरे, चले माशाल्लाह क्लास में आपकी नौकरी तलाश करना शुरू कर दें, फिर क्लास का क्या करेंगे। अच्छा, उसके लिए अलग चीजें होती है ना, अलग ग्रुप्स वगैरह होते हैं वो याद आया एक खैर वो अलहमदुल्ला, मैं खाली सिर्फ जो है ना वो लतीफे के तौर पे सुना रहा हूँ, लतीफे के तौर पे, ठीक है। तो उसको कोई आपको हंसने के अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो किसी साहब को जो है ना वो चिराग मिल गया, ठीक है, वो जो जिसमें से जिन निकलता है ना वो वाला चिराग मिल गया। तो उसने कहा कि अच्छा ये तो वही वाला चिराग है, अलादीन वाला चिराग, तो उसको मुझे रगड़ना चाहिए, देखो देखता हूँ क्या होता है। तो उन्होंने चिराग को रगड़ना शुरू किया तो उसमें से जिन निकल के आ गया, ठीक है। तो अब जिन निकल के आया तो जिन तो फिर यही बोलना होता है ना कि मांगिए क्या मांगना है मेरे आका, हुक्म फरमाइए मेरे आका, ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम वाकई जिन हो, वो वाले जो कि सब कुछ कर सकते हैं, आप हुक्म तो कीजिए। तो उसने कहा मुझे जो है ना वो डिफेंस में जो है वो एक बड़ी सी कोठी चाहिए, ठीक है। तो जिन ने कहा कि आका अगर कोठी लाना मेरे बस में होता तो मैं इस चिराग में क्यों रह रहा होता, ठीक है। तो ये कोठी का सवाल आप किसी और से कीजिएगा, ठीक है। तो अरबों ने फिर उसके ऊपर एक और लतीफा बनाया, उन्होंने कहा जी वास्ता चाहिए, वास्ता मांगना चाहिए, जिन जिन साहब से वास्ता मिल जाए ना तो फिर सारे काम हो जाता है। बहरहाल वास्ता हमारे यहाँ वास्ते के लफ्ज की बजाय कुछ और वो कॉन्टैक्ट्स का लफ्ज इस्तेमाल होता है पाकिस्तान के अंदर। एनीवे तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सारी लतीफा सुना रहा था आपको। बहरहाल आगे जो आयात हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा टाइम है भी हमारे पास। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, ज़ालिका मिन अम्बाइल ग़ैबि नूहीही इलैक वमा कुंत लदैहिम इज़ अजमऊ अमरहुम वहुम यमकुरून, ठीक है। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया मुकम्मल हो गया, हत्ता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो है वो दुआ भी नकल हो गई, ठीक है। तो अब अल्लाह ताला जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जो होकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब बात फरमा रहे हैं, खिताब फरमा रहे हैं कि ये ज़ालिका, ये मिन अम्बाइल ग़ैबी, ये गैब की खबरों में से हैं, ये बातें जो आपको बताई गई है ना ये गैब की खबरों में से हैं। नूही ही इलैका, हम वही करते हैं आपकी तरफ, यानी गैब की खबरें ना हम आपकी तरफ वही करते हैं। वमा कुंता लदैहिम, और आप नहीं थे उनके साथ, जिन लोगों की वाकयात अभी बयान किए गए हैं पूरा का पूरा किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप वहां पर मौजूद नहीं थे, ठीक है। लदा, लदा का मतलब होता है करीब, पास, मौजूद, ठीक है। तो आप वहां पे मौजूद नहीं थे उन लोगों के साथ। आलिमुल गैब का तो दूसरा मसला है, वो हाजिर और नाजिर हर जगह मौजूद है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आप वहां पे मौजूद नहीं थे, तो वो हाजिर नाजिर वाले अंकल्स किधर चले जाएंगे, वो कहेंगे नहीं नबी अलैहिस्सलाम हर जगह मौजूद हैं, देखो देखो अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये फरमाते हैं अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बि अस्हाबिल फील, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। तो इसका मतलब क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम वहां पे मौजूद थे, देख रहे थे कि हाथी वालों के साथ क्या हो रहा है, जब भी तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि अलम तरा कैफा, क्या आपने नहीं देखा कि क्या हाल हुआ हाथी वालों के साथ। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वमा कुंता लदैहिम, ठीक है, आप नहीं थे वहां पे जब ये सब कुछ हो रहा था उन लोगों के साथ। इज अजमाऊ, जब वो ठहराने लगे अमरहुम अपना काम, वहुम यमकुरून, और वो मकर कर रहे थे, फरेब करने लगे थे, ठीक है। बाकी थोड़ा सा तफसील में मजीद पढ़ लेंगे इसका, इसके मानी वमा अक्सर उन्नासी, और नहीं है अक्सर इंसान वलो हरस्ता बेमुमिनी, ठीक है। अगरचे के आप कितना ही चाहें, अगरचे वलो हरस्ता, अगरचे के आप कितना ही हरीस हो, हरीस का मतलब यहां पर कि उनके ईमान लाने के ऊपर आप कितने ही दिल में चाहत रखते हो, यानी बड़े पॉजिटिव मीनिंग में हरीस का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने, वरना हरीस तो लालची वगैरह के लिए ना, लेकिन लालच किस चीज की कि लोग ईमान ले आए, यानी जहन्नुम से बच जाए, क्योंकि ईमान लाए बगैर जो है वो जहन्नुम से कोई भी नहीं बच सकता है। इट मीन्स टू लिसन और अलाइव एट दैट टाइम पीरियड, इट मीन्स टू लिसन और बी अलाइव एट दैट टाइम पीरियड, यानी वमा कुंता लदैहिम, आप उनके साथ मौजूद नहीं थे, आप वहां पे मौजूद नहीं, उनके करीब मौजूद नहीं थे। लदा का मतलब होता है करीब होना, ठीक है। तो लिसन का तो यहाँ पे खैर कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अलाइव ही के मानी में आता है कि आप नहीं थे उस वक्त मौजूद वहां पर। ठीक है, चाहे वो यानी रूहानी शक्ल में मौजूद हो या जो है वो जिस्मानी शक्ल में हो, आप वहां पे मौजूद नहीं थे जब वो लोग ये सारे काम कर रहे थे। ठीक है, वमा अक्सर उन्नासी, तो आसान यानी मानी समझने के लिए अगर हम उसको वलव हरस्ता को अलग रखें, वमा अक्सर उन्नास बिमुमिनीन, अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं है, अक्सर लोग नहीं लेकर के आएंगे ईमान, वलव हरस्ता, आप कितना ही चाहें दिल के अंदर। ठीक है, ईमान आपकी चाहत पे नहीं डिपेंड करता, ईमान तो अल्लाह ताला की तौफीक पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप किसी को भी कितनी मेहनत कर लें, कितना ही चाह लें, आप नहीं किसी को हिदायत दे सकते। इन्नका ला तहदी मन अहबबता, बेशक आप हिदायत नहीं दे सकते जिसको कि आप पसंद करें, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, और अल्लाह ताला हिदायत देता है जिसको भी वो चाहता है। ठीक है, इसी की गोया के एक और यानी एक और तरीके से अल्लाह ताला ने यहाँ पे बयान किया, वमा अक्सर उन्नास वलव हरस्त बिमुमिन, वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अजर, और आप नहीं सवाल करते, नहीं मांगते उनसे कोई अजर, मिन अजर, अजर में से यानी थोड़ा मांगते हैं, बाकी बाकी नहीं मांगते, नहीं ये मिन बादिया नहीं है। ठीक है, यानी आप उनसे जो है ना वो अजर में से नहीं मांगते, नहीं बल्कि मिन बयानिया, मिन एक बयानिया भी होता है कि कोई भी अजर आप नहीं मांगते उनसे। ठीक है, इन हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन, नहीं है वो सिवाय सारे आलमीन के लिए हिदायत नाम, नसीहत नाम। जिक्र का मतलब यहां पर क्या, नसीहत नामा, हिदायत नामा। ठीक है, यहां पर वो जिक्र जो है ना वो याद के मानी में नहीं है कि ये याद है आलमीन के लिए, बल्कि याद दिहानी, याद दिहानी का अलग मतलब होता है और याद का अलग मतलब होता है। तो आप इनसे कोई अजर नहीं मांगते, यानी ये कोई आपका कोई प्रोफेशन नहीं है जो आप जो है ना वो कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको जो है ना वो कोई 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 सैलरी मिलती है, कोई स्टाइपेंड मिलता है, नहीं। ठीक है, आप तो बगैर अजर के ये वाला, यानी ये दुनियावी अजर की बात हो रही है, आखिरत का तो अजर ही अजर है। दावत और तबलीग का काम जो कि आप कर रहे हैं, जो आपकी तरह के लोग कर रहे हैं, आखिरत का तो अजर ही अजर है, लेकिन दुनिया की जो 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 रिकॉम्पेंसेशन मिलती है ना वो नहीं है इसके अंदर, पैसे या उसके बदले में प्लॉट्स मिल रहे हैं, उसके बदले में कोई सोना चांदी मिल रहा है, ये नहीं है इसके। अच्छा, इन हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन, वकअय्यिम मिन आयतिन फिस्समावाति वल अर्ज यमुर्रूना अलैहा वहुम अन्हा मुरिदून, वा और कअय्यिन का जो लफ्ज है ये एक मुबहम किस्म के तादाद के लिए इस्तेमाल होता है अरबी जुबान में, यानी अनक्लियर के हाउ मेनी स्पेसिफाइड नहीं है, तो कितने ही, जैसे उर्दू में कहते हैं ना कितने ही, यानी है बहुत ज्यादा लेकिन काउंट नहीं है उसकी कोई हमारे पास, कितनी ही मिन आयतें, आयतें हैं, निशानियां हैं आसमानों के अंदर और जमीन के अंदर, यमुर्रूना अलैहा, वो गुजरते हैं उनके ऊपर, उन निशानियों के किस बराबर से गुजरते हैं, उनको देखते हुए गुजरते हैं, वहुम अनहा मुरिदून, लेकिन यानी इस हाल में कि वो उनसे एराज करने वाले हैं, वो उनके उनसे एराज करने वाले, अवॉइड करते हैं, वो पे अटेंशन नहीं करते उनकी तरफ, पे अटेंशन एक मजाक में हम कहते हैं, ठीक है, यानी उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते, गौर नहीं करते। ठीक है, वहुम अनहा मुरिदून, क्या लिख रहे हैं, बुजुर्गाने दीन की सोबत में रहने की ख्वाहिश थी, अगर हो सके तो बताइएगा, यानी आपको नौकरी दिलवा दें तो फिर आप सोबत में आ जाएंगे, माशाल्लाह भाई, अल्लाह ताला, अभी ये वाली क्लास जो है ना इसमें तो अल्लाह ताला से मांगने के लिए, ठीक है, अल्लाह ताला से मांगे, अंत वली फिर दुनिया वाला आखिर, वो दुनिया के काम भी बनाते हैं, ठीक है, सब हो जाएगा, फिर सोबत भी मिल जाएगी और जो है ना वो बाकी सब कुछ भी मिल जाएगा। अच्छा, यमुर्रून अलैहा वहुम अनहा मुरिदून, लेकिन वो उन पर ध्यान नहीं दे रहे, तवज्जो नहीं है, किसी और चक्कर में लगे रहते हैं, बात जो हो रही है उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे होते, तो भाई वो तो फिर एराज करने वाले हो गए ना, और फिर उनके साथ फिर क्या होता है, उनको विलायत नहीं मिलती, उनको मदद नहीं मिलती, ना दुनिया में मिलती है ना आखिरत में मिलती है, तो फिर वो मसला हो जाता है उसके बाद। वमा युमिनु अक्सरहुम बिल्लाही, और नहीं ईमान लाते अक्सरहुम उनमें से अक्सर अल्लाह के ऊपर, इल्ला वहुम मुशरिकून, सिवाय इसके कि वो शिर्क भी कर रहे होते हैं। वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते सिवाय इसके कि वो शिर्क भी, यानी ऐसे ईमान लेकर के आते हैं कि साथ साथ शिर्क भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब अल्लाह पर ईमान लेकर के तो आते हैं, यानी अल्लाह ताला की वजूद के कायल होते हैं, अल्लाह ताला की कुछ सिफात के सही सही कायल होते हैं, लेकिन बाकी सिफात के जो है ना वो उनके अंदर हेल्पर्स को ऐड कर देते हैं, अल्लाह ताला के जो है वो पार्टनर्स को भी ऐड कर देते हैं। रिस्क में जैसे मिसाल के तौर पर वो लोग जो थे ना वो रिस्क को अल्लाह ताला की तरफ ही मंसूब करते थे कि हाँ अल्लाह ताला ही रिस्क देने वाला है, लेकिन मसलों को हल करना वो वाली जो सिफत है ना उसके अंदर जो है वो बुतों को भी शामिल कर देते थे, शिर्क भी करते थे, और जो है वो अल्लाह ताला को मानते भी थे कि अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला के बगैर नहीं हो सकता, अल्लाह ताला ही जो है वो असल में बड़े जो है वो अल्लाह ताला ही हैं, लेकिन साथ साथ जो है ना वो अपनी भी उसके अंदर जो होता है ना वो मिलावट भी करते रहते थे। ठीक है, तो ऐसा करने वाला जो होता है ना फिर वो यानी किसी ना किसी दर्जे का फिर वो शिर्क में ही फिर वो मुबतला हो जाता है। अफा अमीनू, क्या वो लोग इस बात से निडर हो गए, यानी उन्होंने अपने आप को सेफ समझ लिया, प्रोटेक्टेड समझ लिया, अमन में समझ लिया, किस बात से? अंत अतिया हम गाशिया तुम मिन अजाबिल्लाह, कि उनके ऊपर कोई ढांकने वाला अल्लाह ताला का अजाब आ जाए, अल्लाह ताला के अजाबों में से ढांकने वाला अजाब आ जाए, यानी कोई ऐसी आफत आ जाए जो उनको हर तरीके से कवर कर ले, क्या वो इस बात से अपने आप को यानी अमन में समझना शुरू हो गए? औ या ये के तअतियहुम सआतु बग्ततन, या उनके ऊपर कयामत की घड़ी एकदम से आ जाए, अचानक से, बग्ततन का मतलब होता है अचानक से, कयामत की घड़ी अचानक से उनके ऊपर आ जाए, वहुम ला यशुरून, इस हाल में कि वो इस बात की समझ नहीं रखते थे कि उनके ऊपर एकदम से मौत आ जाएगी। कयामत जो है ये हर इंसान की कयामत उसकी मौत होती है, और जो वो एक कयामत आएगी ना सूर वाली कयामत, वो तो पूरी इंसानियत के ऊपर एक साथ आएगी, लेकिन मेरी कयामत मेरी मौत, आपकी कयामत आपकी मौत, ठीक है ना, और जो इस दुनिया से चले गए उनके लिए भी ये मौत वाली कयामत आ चुकी है, क्योंकि अब उनका हिसाब किताब शुरू हो चुका उसके बाद। ठीक है, तो ये अचानक मौत आ जाए, हमें किसी को भी नहीं पता कि हमारी मौत जो है वो किस वक्त आने वाली है। ठीक है, अजीब मामला है जिंदगी का। यहाँ पे वैसे हम क्लास मजीद आगे नहीं पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा सा अगर हम तसव्वुर करें, थोड़ा सा हम गौर करें कि आप किसी ऐसी जगह अगर चले जाएं ना कि जहां पर हर वक्त का एक धड़का लगा हो कि अभी कुछ होने वाला है, अभी कुछ अनएक्सपेक्टेडली कुछ ना कुछ जो है ना वो मेरे साथ खराब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ख्याल है ऐसी जगह पे जहां पे कि आपको पता हो कि भाई किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, तो वहां पर आपका दिल जो है ना वो मुतमइन होगा या पुरसुकून होगा? वो तो एक हर वक्त का धड़का जिसको कहते हैं ना उर्दू जुबान में, धड़का लगा हुआ है भाई, यानी नेक्स्ट मोमेंट का आपको नहीं पता कि आपके सांस रुक जाएगी, आपका जो है वो पानी गले में फंस जाएगा, या जो है वो ऊपर से कोई चीज गिर करके आपके ऊपर ऐसी लगेगी कि आप जो है वो दुनिया से चले जाएंगे, या कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये तो बड़ी अजीब गरीब किस्म की जगह हो गई ना, कि जहां पे कि आप हर वक्त ही जो है वो एक टेंशन, हर वक्त की टेंशन है ये। तो इस दुनिया की हकीकत जो है ना वो हमारे लिए ऐसे ही मामले, हकीकत तो यही है ना कि हमें कुछ नहीं पता कि किस वक्त हमारे साथ जो है वो क्या चीज होने वाली है। अजीब बात है, मैं आज किसी कंपनी का जो है ना वो देख रहा था, पता नहीं क्या, शायद पानी की नहीं, हाँ हमारे हैदराबाद से एक दोस्त जो है ना वो कोई सुभान बेकरी का बिस्किट लेकर के आए, तो वो बेकरी के बिस्किट का जो है ना वो डब्बा पड़ा हुआ था सामने, तो उस पर लिखा हुआ था सिंस 1930, यानी लिख देते हैं ना कि जी हमारी बेकरी जो है ना वो 1930 से जो है वो आपकी खिदमत कर रही है, आपको बिस्किट बना बना करके खिला रही है, किसी चीज के ऊपर लिखा होता है जी सिंस 1930, अभी सऊदी अरब की आज जो है वो हो रही है 94th एनिवर्सरी, ठीक है ना, यानी सऊदी अरब 94 ईयर्स से जो है ना ये इस शक्ल के अंदर कायम है। वो बेकरी जो है वो 1930 से, यानी 100 साल में जो है वो 6 साल कम से वो बेकरी चल रही है, ठीक है। तो ये बेकरियां तो चल जाती हैं 100 100 साल, 150 150 साल, कुछ चीजें 200 200 साल चल जाती हैं, कुछ चीजें ये इमारतें जो हैं ये कई 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 100 साल चल जाती हैं, ठीक है ना। जो सबसे ज्यादा कमजोर चीज है कि जिसको के खत्म होने के लिए जो है ना वो कोई जलजले की जरूरत नहीं, कोई धमाके की जरूरत नहीं, कोई बम जो है वो फेंकने की जरूरत नहीं, राइट। सबसे जो जिसको कहते हैं सेंसिटिव और सबसे ज्यादा जो है ना वो यानी कमजोर चीज जो है वो हमारी जान है, राइट। ये बेकरी जो है वो 100 साल से जो है वो चल रही है, लेकिन बेकरी के अंदर काम करने वाले, बेकरी को बनाने वाले, बनाने वालों की औलादें कितनी सारी जो है वो दुनिया से जा चुकी है, लेकिन बेकरी कहीं नहीं गई, वो चल रही है, ठीक। तो हम तो ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहां पर के हमारी जिंदगी अगर तबीयी, यानी जो हमारी लाइफ मानी जाती है, जिस 70 साल की उम्र, 80 साल की उम्र, 90 साल की उम्र, वो भी हो गई फिर भी खत्म हो जाएगी, और अगर वो नहीं हुई, कोई हादसाती तौर पर मौत आ गई, तो वो तो किसी वक्त भी आ सकती है, बूढ़े को भी आ सकती है, बच्चे को भी आ सकती है। बूढ़े जो है वो दुनिया में मौजूद रह जाते हैं, और नौजवान और छोटे छोटे बच्चे जो है दुनिया से चले जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज से हम कैसे गाफिल रह सकते हैं ना, लेकिन जो गाफिल होता है वो इससे भी गाफिल होता है, अपनी जिंदगी में ऐसे रह रहे होते हैं कि जैसे हमने मरना, दूसरों ने बेशक मरना होगा, हमने नहीं मरना, और जिनको हम चाहते हैं कि वो ना मरे उन्होंने नहीं मरना। ये हमारी मजे की चीज है, बहुत ही अजीब और गरीब किस्म का हमारा मामला है कि या एक तो मैंने नहीं मरना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं मरूं, इस वजह से मैंने नहीं मरना, और उसके अलावा जिनको मैं चाहता हूं कि वो ना मरे उन्होंने भी नहीं मरना, उनके अलावा सारे मरते रहेंगे, और जो भी मर गया ही और शी डिजर्व टू डाई, यहाँ पे उसने तो मरने को तो चला गया दुनिया से, जाना ही था भाई, जिस तरह वो चला गया उसी तरह आप भी तो जा सकते हैं, उसी तरह आपका जिगर का टुकड़ा भी तो जा सकता है, उसी तरह आपकी आंखों की ठंडक भी तो जा सकती है, राइट। तो यानी हम तो कभी भी अपनी जिंदगी के बारे में जो है ना वो गाफिल नहीं हो सकते अगर हम सोचें, ठीक है। तो इसी वजह से जो सोचते हैं और फिर नबी अलैहिस्सलाम की बात मानते हैं, तो फिर उनकी जो 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 फोकस हो जाता है ना, फिर वो आखिरत की जिंदगी के ऊपर हो जाता है, वो इस दुनिया के ऊपर उनका फोकस नहीं होता, दुनिया के फोकस से उनको टेंशन होती है, भाई क्या यार मैं क्या करूँ, किसी इस जगह पे कौन सा दिल लगाना। हाँ, अगली जिंदगी में जाना है और यहाँ के आमाल मुझे वहां पे फायदा देंगे, तो मैंने अगली जिंदगी के बारे में सोचना है। अब उनको टेंशन क्या होती है, सिर्फ इस बात की टेंशन होती है कि मेरी यहाँ की जिंदगी के जो औकात हैं वो मैं अगले जिंदगी के लिए कमा रहा हूं उन औकात के अंदर, या मैं जो है ना उनको जाया, दैट्स द ओनली टेंशन, इसके अलावा और कोई टेंशन नहीं होती जिंदगी के अंदर, और ये एक बड़ी अच्छी सी टेंशन होती है जिससे कि उनको फायदा ही फायदा हो रहा होता है, नुकसान हरगिज नहीं होता इस वाली टेंशन से। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी टेंशन अता फरमा दे, ठीक है, और सीख करके अपने आप को राजी करने की, आप अल्लाह ताला को राजी करने की हमें तौफीक अता फरमा दे। वाह, अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।